नमस्कार भारत 25 अक्टूबर दिन शुक्रवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। महाराष्ट्र हरियाणा चुनाव में बीजेपी की सीटें घटी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने दिया संकेत, सीएम बने रहेंगे फडणवीस और खट्टर।
उनके नेतृत्व में आने वाले 5 वर्ष महाराष्ट्र के और हरियाणा के विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने वाला कार्यकाल रहेगा।
हरियाणा में बहुमत जुटाने के लिए रात भर सक्रिय रहे बीजेपी के दिग्गज जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला की भूमिका हुई अहम।
क्या दुष्यंत सिंह चौटाला जाटों के नेता होते हुए क्या भाजपा को समर्थन दे सकते हैं?
और क्या उपचुनाव नतीजों से बच गई है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी?
नीतीश कुमार के लिए वार्निंग सिग्नल टाइप का है कि कहीं ना कहीं लोग जेडीयू के उम्मीदवारों को नकार रहे हैं।
खबरें और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार नवीन नेगी से। महाराष्ट्र और हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे कल आ गए। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला है, उन्हें 163 सीटें मिली हैं, जबकि हरियाणा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिल पाया। हरियाणा में बीजेपी को 40, कांग्रेस को 31 और अन्य को 19 सीटें मिली हैं। यहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपनी सरकार बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने और सीमा रेखा के पास गोलीबारी करने के आरोप लगाए हैं। दोनों देशों ने कहा है कि दूसरी तरफ से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया, जिसके बाद उन्हें जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। इस गोलीबारी में दोनों तरफ कुछ आम लोगों के मारे जाने की बात भी कही जा रही है। अधिक जानकारी दे रहे हैं श्रीनगर में मौजूद बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर।
एक और बार ये युद्ध विराम का उल्लंघन सेना के अनुसार पाकिस्तानी सेना की तरफ से कल दोपहर से ही शुरू हो गया था। रात के वक्त भी ये जबरदस्त तरीके पे शेलिंग का सिलसिला जो है वो जारी रहा। लोगों का कहना है कि जिस तरह से जम्मू के सेक्टर्स में कंट्रोल लाइन के पास रहने वाले लोगों को पुख्ता बंकर बनाए गए हैं, वैसे टंगडार, केरन या टीटवाल सेक्टरों में ऐसा नहीं हुआ है। अब लोगों ने खुद मोर्चे बना रखे थे और ऐसे ही एक मोर्चे पे एक शेल गिरा, जिसमें एक 18 साल की लड़की आबिदा बेगम जो है उनकी मौत हो गई है और 3 लोग जख्मी हो गए हैं।
ये थे बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों के अपने एक दल को चिली की राजधानी सैंटियागो भेज रहा है। यह दल सैंटियागो में चल रहे विरोध प्रदर्शन और वहां सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर निगरानी रखेगा। इन विरोध प्रदर्शन में अभी तक 18 लोगों के मारे जाने की बात कही जा रही है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की प्रमुख और चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैशलेट ने कहा कि वो इस हिंसा पर शुरुआत से नजर बनाए हुए हैं और चिली में मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों की जाँच के लिए इस दल को भेज रही हैं। वहीं दूसरी तरफ चिली के राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा ने अपनी सरकार के कदमों का बचाव किया है।
La situación de orden público y de seguridad ciudadana está mejorando.
जनता की सुरक्षा के मद्देनजर हालात अब सुधर रहे हैं। इसके साथ ही लोगों का जीवन भी दोबारा सामान्य हो रहा है। हमारी सरकार रक्षा विभाग के लोगों के साथ मिलकर स्थिति को सामान्य बनाने की लगातार कोशिशें कर रही है। ये थे चिली के राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इटली की पुलिस ने प्लास्टिक रिसाइकलिंग रैकेट से जुड़े एक गैंग को पकड़ा है। पुलिस ने इस गैंग में काम करने वाले 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग विषैली सामग्री को सिसिली से चीन लेकर जाते थे। इस रैकेट के बारे में तब पता चला जब चीन से निर्मित जूतों को इटली में बेचा जा रहा था और उसमें खराब गुणवत्ता का प्लास्टिक पाया गया। पुलिस पिछले 4 साल से इनकी जाँच कर रही थी। पुलिस ने बताया है कि उन्होंने इस गैंग के सरगना क्लॉडियो कार्बोनारो को भी गिरफ्तार कर लिया है। ब्रिटेन की पुलिस का कहना है कि एसेक्स में एक ट्रक के भीतर पाए गए 39 शव चीन के नागरिकों के थे। इनमें से 8 शव महिलाओं के थे। इस ट्रक के ड्राइवर मो रॉबिन्सन की जांच कर रही ब्रिटिश पुलिस को पूछताछ के लिए 24 घंटे का वक्त और दिया गया है। 25 साल के रॉबिन्सन को 8 महिलाओं और 31 पुरुषों की हत्या के मामले में संदिग्ध माना गया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने एक बार फिर चीन पर निशाना साधते हुए उसे अपने पड़ोसियों को परेशान करने वाला देश बताया है। माइक पेंस ने अपने भाषण में कहा कि चीन अपने पड़ोसी देशों के खिलाफ सेना का इस्तेमाल करता है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत, आपके साथ मैं हूं वात्सल्य राय। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ बीबीसी के मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं लाइव। ये क्रिकेट मैच नहीं था, चुनावी समर था, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं, सुनिए।
हमारी 105 सीटें आई है, इसका मतलब यह है कि पिछले समय हमारा स्ट्राइक रेट ये 47% था, 47%, अब हमारा स्ट्राइक रेट ये 70% है, 70% है। जितनी सीटें हम लड़े उसमें से 70% सीटों पर हमने विजय हासिल की है।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है, उसने 288 में से 105 सीटों पर जीत हासिल की है। साल 2014 में बीजेपी अकेले चुनाव मैदान में उतरी थी और तब 122 सीटें हासिल की थी, यानी सीटें घट गई हैं। 5 साल पहले शिवसेना ने 63 सीटों पर जीत हासिल की थी, इस बार शिवसेना ने 56 सीटों पर जीत हासिल की है। इस बार दोनों दल गठबंधन बनाकर चुनाव मैदान में उतरे थे, फिर भी कई बड़े नेता चुनाव हार गए। बीजेपी की सीटें हरियाणा में भी कम हुई हैं और वो बहुमत से पीछे रह गई है, लेकिन महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के लिए राहत ये है कि उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन बरकरार है। सुनिए संदीप राय की रिपोर्ट।
महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजे पक्ष में आते देख बीजेपी के दिल्ली और मुंबई कार्यालय के बाहर मिठाइयां बंटने लगीं और ढोल नगाड़ों का शोर बढ़ गया। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी और शिवसेना गठबंधन को करीब 160 सीटें हासिल हुई हैं, जबकि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी एनसीपी गठबंधन को करीब 104 सीटें हासिल हुई हैं। हरियाणा में भी बीजेपी 40 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि कांग्रेस ने पिछली बार के मुकाबले अपना प्रदर्शन सुधारा है और 16 सीटों का इजाफा करते हुए करीब 31 सीटों पर जीत दर्ज की। INLD से अलग जननायक जनता पार्टी यानी JJP बनाने वाले दुष्यंत चौटाला ने सबको चौंकाते हुए 10 सीटों पर जीत दर्ज की। गुरुवार को हुई मतगणना में भले ही एक समय ऐसा लग रहा था कि हरियाणा में शायद कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई बराबरी पर छूटे, लेकिन शाम होते होते पलड़ा बीजेपी की ओर झुक गया। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा,
महाराष्ट्र के अंदर भाजपा सेना युति पूर्ण बहुमत के साथ फिर से एक बार अपनी सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा में गत विधानसभा चुनाव से अपने वोटों में 3% की बढ़ोतरी करते हुए हम सबसे बड़े दल बनकर उभरे हैं।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों राज्यों में बीजेपी की जीत पर बधाई देते हुए दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर एक बार फिर भरोसा जताया है।
दोनों मुख्यमंत्रियों ने, उनकी टीम ने 5 वर्ष तक महाराष्ट्र की और हरियाणा की जो सेवा की, और मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में आने वाले 5 वर्ष महाराष्ट्र के और हरियाणा के विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने वाला कार्यकाल रहेगा।
इन चुनाव में बीजेपी ने महाराष्ट्र में 200 से अधिक सीटें लाने का लक्ष्य रखा था, जबकि हरियाणा में 75 पार का नारा दिया था। 288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी शिवसेना गठबंधन के पास 185 सीटें थी, जिनमें बीजेपी के 122 तो शिवसेना के 63 MLA थे, यानी 2014 के मुकाबले बीजेपी को करीब 18 सीटों और शिवसेना को करीब 7 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है, जबकि NCP और कांग्रेस गठबंधन को यहां करीब 14 सीटों का फायदा हुआ। कमोबेश यही स्थिति हरियाणा में रही, जहां पिछले चुनाव में राज्य की 90 सीटों में से बीजेपी को अकेले 47 सीटें मिली थीं और कांग्रेस 19 सीटें पाने वाली INLD से भी पीछे 15 सीटों तक सिमट गई थी। इस चुनाव में बीजेपी को हरियाणा में 7 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा, जबकि कांग्रेस ने 31 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए अपनी टैली को करीब दूना कर लिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जाट समुदाय ने हरियाणा चुनाव में बड़ी भूमिका निभाई और इसका नुकसान बीजेपी को हुआ, जबकि नई नवेली पार्टी JJP और कांग्रेस को इसका फायदा हुआ। वरिष्ठ पत्रकार जतिन गांधी कहते हैं कि JJP का प्रदर्शन हरियाणा की करवट लेती राजनीति का संकेत है।
अब ये कह सकते हैं जो जाट सपोर्ट बेस दुष्यंत चौटाला के दादा का था, वो उनके चाचा के पास ना जा करके, जो इनके परिवार में जो एक वर्टिकल स्प्लिट हुआ है, तो ओम प्रकाश चौटाला का जो सपोर्ट बेस था वो दादा के पास ना रह करके और उनके जो बेटे हैं अभय चौटाला उनके पास ना रह करके वो दुष्यंत चौटाला की तरफ चला गया।
दोनों राज्यों में कई दिग्गज चेहरों को हार का सामना करना पड़ा है। पंकजा मुंडे समेत महाराष्ट्र सरकार के 6 मंत्री अपनी सीट नहीं बचा पाए, जबकि हरियाणा में कांग्रेस के दिग्गज नेता रणदीप सुरजेवाला और बीजेपी के दिग्गज नेता कैप्टन अभिमन्यु चुनाव हार गए। चुनाव से कुछ ही दिन पहले बीजेपी ज्वाइन करने वाले पहलवान योगेश्वर दत्त और बबीता फोगाट के अलावा टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट भी चुनाव हार गए हैं।
रिपोर्ट सुना रहे थे संदीप राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारा कर दिया है कि देवेंद्र फडणवीस अपनी कुर्सी को लेकर निश्चिंत हो सकते हैं, लेकिन क्या बीजेपी की सहयोगी शिवसेना भी ऐसा ही सोच रही है? नतीजों के बाद महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, ये बताने के लिए पुणे से फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी सहयोगी हलीमा कुरैशी। जी हलीमा, स्वागत है आपका।
हम अगर देखें तो पूरा महाराष्ट्र में ही एनसीपी ने एक अलग सा रिजल्ट दिया है जो कि किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन अभी एनसीपी अगर हम देखें, एनसीपी और कांग्रेस से जो महागठबंधन है उन्होंने करीब करीब 100 के करीब उनकी सीटें आई है और इसका कहीं ना कहीं फायदा उठाते हुए अब वो किस तरीके से एक विरोधी पक्ष के रूप में क्या मांग करते हैं वो भी।
जी, एनसीपी और कांग्रेस से ज्यादा जानने में ये दिलचस्पी है कि सरकार तो बीजेपी और शिवसेना की बनती दिख रही है, लेकिन क्या दोनों दलों के बीच मुख्यमंत्री के नाम और बाकी बातों पर भी सहमति बन गई है? शिवसेना का रुख क्या है खासतौर पर?
शिवसेना के अभी हम कल ही देखे तो मुंबई में जब उद्धव ठाकरे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली तभी उन्होंने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि वो बीजेपी में क्या प्रॉब्लम्स है वो जान के ले, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं उनके जो बातों पर से यही तय हुआ है कि वो आदित्य ठाकरे के लिए एक अच्छी बड़ी पोस्ट की हम कहें कि उप मुख्यमंत्री पद के बारे में भी वो डिमांड कर सकते हैं।
और जो 50-50 फॉर्मूले की बात आ रही थी कि 2.5 साल मुख्यमंत्री बीजेपी का हो शिवसेना का 2.5 साल रहे, इस तरह की कोई बात सामने आई है?
हम अगर देखें तो कल जैसे पंतप्रधान मोदी जी ने भी जैसे कहा कि वापस से दोबारा देवेंद्र फडणवीस जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं शिवसेना ने बिल्कुल पूरी तैयारी की है कि वो मांग करेंगे कि आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री किया जाए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बरेली में से भी जीत हासिल की है उनको वहां से भी काफी सपोर्ट मिला है और शिवसेना पूरी तरह से प्रेशर बनाई रखेगी क्योंकि उनकी जो सीटें है अगर हम देखें बीजेपी के मुकाबले में अच्छी खासी सीटें आई है और उसी के दम पर उसी के प्रेशर पर वो शायद से ये बात आगे
बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया हलीमा कुरैशी इस पूरे अपडेट के लिए। महाराष्ट्र में एनडीए की सीटें घटी हैं और यूपीए की सीटें बढ़ी हैं। राजनीतिक विश्लेषक इन नतीजों को किस तरह से देख रहे हैं ये समझने के लिए हमारे साथी संदीप सोनी ने बात की वरिष्ठ पत्रकार सुहास पलसेकर से।
अगर आप बीजेपी के खुद के हिसाब से देखेंगे तो उनके लिए तो बहुत नाराजगी की स्थिति होगी क्योंकि वो चाहते थे कि वो 120 तक फिर भी चले जाएंगे और अगर वो 100 तक रहते हैं तो उनके लिए ये बहुत नाराजगी की चीज़ रहेगी। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इन नतीजों से ये क्लियर हो जाता है कि असल में मतदाताओं को इनके बारे में कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ दूसरा कोई विकल्प नहीं है स्ट्रांग, इसलिए इनको इतना फायदा मिल गया। अलग तरीके से कहेंगे तो ये कह सकते हैं कि कांग्रेस और एनसीपी, पर्टिकुलरली कांग्रेस, अगर इस चुनाव में सचमुच लड़ती, कांग्रेस लड़ी ही नहीं, उनका कुछ कैंपेन भी नहीं था, अगर एज ए पार्टी वो इस चुनाव में उतर जाती, अगर नेशनल लीडरशिप इसमें दिलचस्पी लेती तो मेरे ख्याल से कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहता और फिर वो बीजेपी और शिवसेना के लिए काफ़ी कठिन हो जाती सिचुएशन।
ये कहना ठीक होगा कि कांग्रेस ने गठबंधन का साझेदार होने के बावजूद ये चुनाव आधे अधूरे मन से अनमने मन से लड़ा?
स्टेट लेवल में तो उनका ये है कि उनके जो लीडर ऑफ अपोजिशन रहे वो खुद ही लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी में चले गए, उनके जो स्टेट प्रेसिडेंट रहे वो भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अटक गए अशोक चव्हाण, इसकी वजह से उनको अभी नए स्टेट प्रेसिडेंट अपॉइंट करना पड़ा, वो नए थे, 4 महीने में कितना काम आप कर सकते हो, इसकी वजह से ना स्टेट लेवल लीडरशिप है ना नेशनल लीडरशिप है।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार सुहास पलसेकर। हरियाणा में भी राजनीतिक स्थिति बहुत दिलचस्प हो गई है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई है लेकिन उसे बहुमत के लिए 6 और विधायकों का समर्थन चाहिए। इसके लिए रात भर पार्टी के बड़े नेता नए चुने गए विधायकों से संपर्क करते रहे। इस पूरे घटनाक्रम पर हमारे साथी नवीन नेगी ने करीबी निगाह रखी हुई थी। जी नवीन, क्या कुछ होता रहा रात भर, बताइए श्रोताओं को।
जी वात्सल्य, जब से हरियाणा के चुनाव आए हैं तब से लगातार बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से सरकार बनाने की कोशिशें चल रही हैं। बीजेपी की बात करें तो रात भर लगातार मुलाकातों का दौर चलता रहा। अब से करीब 3 घंटे पहले जो है समाचार एजेंसी ANI ने कुछ तस्वीरें पोस्ट की और उसमें उन्होंने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह के घर पर इसी सिलसिले में एक अहम बैठक चल रही थी। इस बैठक में बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष JP नड्डा, हरियाणा के पार्टी प्रमुख अनिल जैन और BL संतोष भी मौजूद थे। और इससे पहले जो है सिरसा से चुनाव जीत कर आए हरियाणा लोकहित पार्टी के नेता गोपाल कांडा ने भी JP नड्डा के घर पहुंचे। वो वहां उन्होंने मुलाकात की और ऐसा माना जा रहा है कि वे बीजेपी को अपना समर्थन देने के लिए तैयार हैं।
गोपाल कांडा वही नेता हैं जिनका एक समय बीजेपी काफी विरोध करती थी।
जी बिल्कुल, विरोध इसलिए था क्योंकि 2009 में जो है गोपाल कांडा निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर विधायक बन के आए थे और हरियाणा में जो हुड्डा सरकार थी उसमें मंत्री पद पर भी थे, लेकिन फिर 2012 में वो चर्चा में आए और उनकी एक एयरलाइन कंपनी थी जिसमें एक महिला कर्मचारी गीतिका शर्मा ने आत्महत्या कर ली थी और अपने सुसाइड नोट में उन्होंने जो है कथित रूप से जो है गोपाल कांडा का नाम उन्होंने लिखा था
जी, और इस वजह से वो मुश्किलों में रहे। शुक्रिया नवीन नेगी। और इस बीच हरियाणा के रोहतक से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं पत्रकार सत्सिंह। जी सत्सिंह, स्वागत है। जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कल कांग्रेस खेमा खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत उत्साहित दिख रहे थे, फिलहाल क्या खबर है? क्या कांग्रेस भी कोई कोशिश कर रही है सरकार बनाने की?
जी देखिए, आप जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उनको कांग्रेस ने 20 दिन पहले ही कमान दी थी फुल फ्लैश की, आप यहाँ कांग्रेस का संभालिए। और इन्होंने 20 दिन के अंदर इस तरह का मोमेंटम बिल्ड कर दिया कि 31 सीट आ गई, जो बीजेपी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अंडर एस्टिमेट करे थी और खुद 75 पार की बात करी थी, खुद उन्होंने 31 सीट ला करके सबको चौंका दिया है। दूसरी तरफ अब दो ही ऑप्शन बचते हैं कांग्रेस के पास, एक तो JJP के साथ है और साथ में तो 7 इंडिपेंडेंट है, क्योंकि 2009 में जो स्थिति थी बिल्कुल इसी तरह से थी।
जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो बीजेपी खेमे से खबर आ रही है वहां से कोशिशें शुरू हो गई हैं, सीधा बताइए क्या कांग्रेस की तरफ से ऐसी कोई कोशिश होती देख रहे हैं आप?
जी बिल्कुल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कल भी शाम रात तक मीडिया से बात करते हुए कहा कि कल हमारे दिल्ली में मीटिंग है और हम पूरी तरह से सभी के साथ संपर्क में है। जिस तरह से 2009 में हमने सरकार बनाई थी उसी तरह से हम इस बार भी सरकार बनाएंगे JJP के साथ और इंडिपेंडेंट के साथ, अभी तक उनके प्रयास जारी हैं।
जी यानी आप कह रहे हैं कि आज जो मीटिंग होगी उससे आगे तस्वीर सामने आएगी। शुक्रिया सत्सिंह। हरियाणा में नए राजनीतिक दल जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला भी चर्चा में है। उनकी पार्टी ने 10 सीटें हासिल की हैं, क्या इस पार्टी की जीत हरियाणा की राजनीति को लेकर कोई संकेत देती है? हमारे साथी अभिजीत श्रीवास्तव ने यह सवाल किया वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन से।
दुष्यंत चौटाला जो ग्रैंडसन है ओम प्रकाश चौटाला के, उन्होंने बहुत पहले ही, करीब 1.5 साल पहले, उन्होंने इस चीज को समझ लिया था कि अब धरोहर जो है, चौधरी देवीलाल की जो धरोहर है, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे हरियाणा के, उनकी धरोहर की लड़ाई है, तो उस धरोहर की लड़ाई में वही आगे निकल सकता है जो सबसे पहले ग्राउंड को हिट कर ले। तो दुष्यंत सिंह चौटाला करीब 1.5 साल से प्रदेश चुनावों को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा की पूरी तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में घूम रहे थे और आपको याद होगा बीच में जाट आरक्षण का जो बहुत बड़ा एक मुहिम चला था हरियाणा में जिसमें बहुत वायलेंस हुई थी, उसके बाद बहुत ध्रुवीकरण और पोलराइजेशन हो गया था जाट्स और नॉन जाट्स में, और मनोहर लाल खट्टर सरकार पे इल्जाम लगा था कि उन्होंने इसको रोकने के लिए कोई खास कदम नहीं उठाए। उस वक्त जाट बहुत नाराज हो गए थे बीजेपी से, उसी वक्त शायद ऐसा लगा इन लोगों को, खासकर जो हम बात कर रहे हैं दुष्यंत चौटाला की, कि ये वक्त ऐसा है कि जाट लीडरशिप में अपने आप को एस्टैब्लिश किया जाए। आपको पता है कि कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कोई बड़ा ओहदा अभी तक नहीं दिया था, चुनाव से कुछ दिन पहले ही उनको CLP लीडर घोषित किया। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े जाट नेता है कांग्रेस के, पर क्योंकि उनको चेहरा नहीं बनाया गया था चुनावों का कांग्रेस की तरफ से, तो जाटों को ये समझ नहीं आ रहा था कि हमारा कौन नेतृत्व करेगा आने वाले चुनावों में, तो दुष्यंत चौटाला ने ये वैक्यूम फिल किया।
इन्होंने एक चीज और भी कहा था चुनाव से ठीक पहले, बीजेपी या कांग्रेस इन दोनों में से कोई भी पार्टी 40 सीटों से अधिक नहीं जीत पाएगी।
हालांकि बीजेपी और INLD ने मिलकर सरकार चलाई है, तो अब क्या दुष्यंत सिंह चौटाला जाटों के नेता होते हुए क्या भाजपा को समर्थन दे सकते हैं? क्या उनको मॉरली ये सूट करेगा? पॉलिटिकली तो सूट शायद कर भी जाए, और अगर कांग्रेस के साथ समझौता करते हैं तो भी बहुत बड़ा एक असमंजस की स्थिति है दुष्यंत के लिए, क्योंकि कांग्रेस में उनके कद के जाट नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा।
ये थी वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। आगे बात करेंगे बिहार के उपचुनाव के नतीजों की, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं दिल्ली से छपे अखबारों पर। अखबारों के साथ तैयार हैं नवीन नेगी। जी नवीन, क्या सुर्खियां हैं आज?
वात्सल्य, जैसे कि हम पहले से ही अंदाज़ा लगा रहे थे कि दिल्ली से छपे आज के सभी अखबारों में लगभग हरियाणा और महाराष्ट्र के जो चुनावी नतीजे हैं उन्हीं से ही खबरें भरी होंगी। तो अखबारों ने अलग अलग तरीके से इन नतीजों की जो समीक्षा की है, अलग अलग बड़ी बड़ी आकर्षक सुर्खियां लगाई हैं।
जैसे और तस्वीरें भी मैं देख पा रहा हूँ जी, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कल बीजेपी मुख्यालय में विक्ट्री साइन बनाया था उसकी तस्वीरें सारे अखबारों के पहले पन्ने पर दिखती है।
जी, उन्होंने विक्ट्री साइन तो बनाया लेकिन उन्हें जीत मिली या नहीं मिली इस पर समीक्षाएं अलग अखबारों में सभी ने की है। इंडियन एक्सप्रेस ने जैसे कि सुर्खी लगाई है कि बीजेपी जीती लेकिन, और लेकिन के आगे उन्होंने डॉट लगा दिए तीन, जो खाली जगह छोड़ दी है कि अपने आप सोचिए कि जीती है तो कैसे जीती है। हिंदुस्तान टाइम्स ने भी लिखा है कि बीजेपी जीती फिर विपक्ष उभरा, और नवभारत टाइम्स ने तो बड़ी अच्छी सी और बड़ी आकर्षक हेडलाइन लिखी है कि वोटर ने सबको कहा हैप्पी दिवाली।
जी,
दिवाली आने वाली है,
यानी हर दल को खुश कर दिया वोटरों ने।
जी, सभी को खुश कर दिया, और उन्होंने कुछ रॉकेट के जो है उन्होंने फीचर्स बनाए हुए ऐसे ग्राफिक्स से बनाए हैं, उसमें सभी नेताओं के उन्होंने तस्वीरें भी लगाई हैं। और हिंदुस्तान टाइम्स का जो शीर्षक है वो है हरियाणा में भाजपा को झटका। तो झटका इसलिए क्योंकि उनकी सीटें कम हो गई, बहुमत नहीं मिल पाया। और इसी के साथ इंडियन एक्सप्रेस ने जो है लिखा है, उन्होंने कहा कि कल जब कांग्रेस ने एक अच्छा प्रदर्शन भी किया माना जा रहा है, उसके बाद भी जो राहुल गांधी सामने नहीं आए, कांग्रेस की तरफ से कोई और बड़ा नेता सामने नहीं आया जिसने इस पर कोई बयान दिया हो, जबकि बीजेपी की तरफ से एक बकायदा कार्यक्रम किया गया, पूरी की पूरी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, नरेंद्र मोदी अमित शाह दोनों ने संबोधित किया अपने कार्यकर्ताओं को। तो कह रहे हैं कि क्यों आखिरकार कांग्रेस सामने क्यों नहीं आई,
उन्होंने यानी क्रेडिट लेने की कोशिश क्यों नहीं की। और मैं एक और खबर देख रहा हूँ कि हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों में जो बड़े नेता हारे हैं उनके नाम और उनको हेडलाइन में लेते हुए कई अखबारों ने खबर फ्रंट पेज पे दी है।
जी बिल्कुल, इसके साथ ही मैं देख रहा हूँ कि दैनिक भास्कर अखबार है, उसमें उन्होंने चीफ जस्टिस का बयान छापा है जो कि अयोध्या विवाद से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा है कि हमने जो फैसला है वो सुरक्षित कर लिया है और अब फिलहाल इस केस को जो है वो भूल गए हैं, उन्होंने ऐसा कहा है। गुरुवार को यानी कल उन्होंने ये बयान दिया था। उन्होंने कहा कि मोल्डिंग ऑफ रिलीफ के दलीलें लेकर पहुंचे पक्षकार से भी उन्होंने जो है अब इस मामले को भूल जाने के लिए ऐसा कहा है।
जी, ये फैसला कब आएगा इसके बारे में कोई जानकारी शायद नहीं है।
जी अभी नहीं है, पर शायद 17 नवंबर से पहले जो है इसका फैसला आ जाएगा उनके रिटायरमेंट से पहले। और आज जो है धनतेरस है, तो इससे जुड़ी हुई खबर है कि सोना जो है और थोड़ा महंगा हुआ है, जबकि चांदी जो है थोड़ी गिरी है उसकी कीमतें। तो खरीदारी के लिहाज से जो है आज लोग खरीदारी करते हैं, तो कहा गया है कि किस तरीके से खरीदारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं।
जी बहुत शुक्रिया नवीन नेगी अखबारों की समीक्षा के लिए।
नमस्कार भारत, शॉर्ट वेव 49, 41 और 25 मीटर बैंड यानी 6070, 7290 और 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
और अब बात बिहार की। बिहार में हुए उपचुनाव के नतीजों ने सत्ताधारी एनडीए को झटका दिया है। वोटरों ने असल चोट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को दी है। चुनाव नतीजों को उनके लिए खतरे की घंटी क्यों कहा जा रहा है, बता रहे हैं नीरज सहाय।
बिहार में विधानसभा की 5 और लोकसभा की 1 सीट के लिए हुए उपचुनाव में जहां एनडीए ने समस्तीपुर लोकसभा सीट जीतकर संसदीय चुनाव की सफलता को कायम रखा है, वहीं विधानसभा की 2 सीटें जीतकर राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी ताकत का एहसास कराया है। समस्तीपुर से लोजपा के प्रिंस राज 1,00,000 से अधिक वोटों से विजयी रहे हैं। यह सीट उनके पिता रामचंद्र पासवान के निधन से खाली हुई थी। वहीं विधानसभा उपचुनाव में एनडीए का प्रमुख घटक जदयू केवल नाथनगर की सीट बड़ी मुश्किल से जीत पाया है। जदयू का 4 में से 1 सीट जीतना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए मतदाताओं का कड़वा संदेश माना जा सकता है। जदयू के प्रवक्ता निखिल मंडल के अनुसार,
तो अब हम जब जब हारे तब तब हमने इस चीज को लेकर के ग्राउंड रियलिटी चेक की और उसके तहत हमने काम किया, और हमें विश्वास है कि इस बार भी हम तमाम लोग बैठेंगे, एनडीए के टॉप लीडर्स बैठेंगे, तमाम कैंडिडेट से पता किया जाएगा कि क्या एक्चुअल कारण रहा और उसके तहत हम उस पर काम करेंगे और फिर जनता के पास जाएंगे।
राज्य में पहली बार ओवैसी की पार्टी ने किशनगंज सीट जीतकर प्रदेश की राजनीति में दस्तक दे दी है। महागठबंधन में राजद 2 सीटों पर जीता है तो दरौंदा सीट पर भाजपा के बागी निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। उपचुनाव में 4 में से 2 सीटें जीतने से राजद में उत्साह का माहौल है। पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कहते हैं कि
तंत्र में जनता मालिक है, अगर किसी को अर्श पर पहुंचाती है तो वही जनता फर्श पर पहुंचा देती है। जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में बिहार की जनता ने अपार जन समर्थन एनडीए को दिया, इसके बाद से जिस तरह से बिहार की जनता इस डबल इंजन में पिस रही थी, का ये आक्रोश जनता के आक्रोश का प्रकटीकरण।
हालांकि इस चुनाव में महागठबंधन में शामिल कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम का खाता नहीं खुला है। परिणामों के अनुसार दरौंदा सीट से भाजपा के बागी और निर्दलीय प्रत्याशी कर्णजीत सिंह ने भारी जीत हासिल की है। वहीं बेलहर और सिमरी बख्तियारपुर से राष्ट्रीय जनता दल के रामदेव यादव और जफर आलम जीते हैं। जदयू के झोले में सिर्फ नाथनगर सीट ही आई है जहाँ से लक्ष्मीकांत मंडल जीते हैं। उपचुनाव के परिणाम पर वरिष्ठ पत्रकार एस ए शाद का कहना है कि
जदयू का सब कुछ स्टेक पे था। मुख्य रूप से 4 सिटिंग सीटें जदयू की थी और उसमें से 3 सीटें वो हार गई, तो ऐसे में ये एक नीतीश कुमार के लिए वार्निंग सिग्नल टाइप का है कि कहीं ना कहीं लोग जदयू के उम्मीदवारों को नकार रहे हैं और चूंकि अगले साल चुनाव होना है इसलिए इनको आगे की रणनीति उसी तरीके से बनानी होगी। किशनगंज में कांग्रेस ने जो इस बार कैंडिडेट दिया था उसको लेके थोड़ा गुस्सा था और इधर हाल के दिन में NRC आर्टिकल 370 इन सब बातों को लेकर के ओवैसी अमंग मुस्लिम एक लीडर के रूप में इमर्ज किए हैं।
जाहिर है पक्ष विपक्ष दोनों खेमों के लिए यह उपचुनाव सेमीफाइनल की तरह रहा है और दोनों को अपने अपने खेमे को दुरुस्त करने का अवसर साबित करने वाला भी हो सकता है। नीरज सहाय, BBC पटना।
और अब बात भारत प्रशासित कश्मीर की। कश्मीर घाटी के शोपियां में संदिग्ध चरमपंथियों के हमले में 2 ट्रक ड्राइवरों की मौत हो गई। इस घटना पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथी दिलनवाज पाशा ने श्रीनगर में मौजूद BBC संवाददाता रियाज मसरूर से बात की।
पिछले 10-12 दिनों में अपने तरह की तीसरी घटना है। शोपियान जिला दक्षिणी कश्मीर का बहुत ही संवेदनशील जिला वैसे भी है। अब चूंकि हार्वेस्ट चल रहा था तो वहां पे जो ट्रक्स आती हैं बाहर से वो शाम को स्थिति को देखते हुए रात को सेब लोड किए जाते हैं। तो ये जो 3 ट्रक थे, एक पंजाब का था, एक राजस्थान का, एक हरियाणा का, ये शोपियान जिले के चित्रागाम में सेब लोड कर रहे थे कि अचानक कुछ संदिग्ध चरमपंथियों ने पुलिस के अनुसार उन पे फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें अलवर राजस्थान का रहने वाला इलियास खान एक ड्राइवर जो है वो मारा गया है और एक और ड्राइवर मारा गया है। लेकिन पुलिस का कहना है कि उनके पास से कोई पहचान पत्र नहीं मिला है इसलिए उनकी पहचान नहीं हो पाई है। और एक होशियारपुर पंजाब का रहने वाला ड्राइवर है जीवन सिंह, जो घायल है, जिसे अस्पताल ले जाया गया है। इससे पहले भी अक्टूबर के महीने में ही पहला हमला ट्रक ड्राइवर्स पे शोपियान के शिरमाल इलाके में हुआ था, जहां राजस्थान अलवर का ही रहने वाला शरीफ खान ड्राइवर जो है वो मारा गया था। एक व्यापारी जो है चरणजीत सिंह पंजाब से यहाँ आया था तो उनपे वहाँ पे काम कर रहे थे तो फायरिंग हुई, वो उसमें मारे गए और उनके एक साथी संजीव कुमार वो घायल हो गए। तो कुल मिलाकर इन 10-12 रोज में जो हैं 3 ऐसे लोग मारे गए हैं जो सेब का व्यापार करने के सिलसिले में कश्मीर आए थे।
इस तरीके के हमलों का सेब के व्यापार पर भी वहाँ काफी असर हो रहा होगा।
बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है क्योंकि पहले ही स्थिति को देखते हुए वहाँ कुछ लोगों ने भी बताया और पुलिस का कहना था कि चरमपंथी जो है सेब उतारने की प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं, वो उतारने नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि हड़ताल है, अगर बाकी दुकान बंद हैं तो इसलिए जो सेब उतारने की प्रक्रिया है इसको भी बंद रखा जाना चाहिए विरोध प्रदर्शन के तौर पे।
ये थे BBC संवाददाता रियाज मसरूर। और चलते चलते मुख्य समाचार नवीन नेगी से।
BBC समाचार। महाराष्ट्र और हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे कल आ गए। महाराष्ट्र में BJP शिवसेना गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला है जबकि हरियाणा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिल पाया है। भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने और सीमा रेखा के पास गोलीबारी करने के आरोप लगाए हैं। चिली में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों के अपने एक दल को चिली की राजधानी सेंटियागो भेज रहा है। इटली की पुलिस ने प्लास्टिक रिसाइकलिंग रैकेट से जुड़े एक गैंग को पकड़ा है। पुलिस ने इस गैंग में काम करने वाले 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। ब्रिटेन की पुलिस का कहना है कि एसेक्स में एक ट्रक के भीतर पाए गए 39 शव चीन के नागरिकों के थे, इनमें से 8 शव महिलाओं के थे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने एक बार फिर चीन पर निशाना साधते हुए उसे अपने पड़ोसियों को परेशान करने वाला देश बताया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो की कमान थी तिलक राज भाटिया के हाथ। दिन भर में होगी आपसे अगली मुलाकात। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।